मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 21 जनवरी 2019 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले फ्राइडे के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने एक घटना की चर्चा की थी, जिसके तहत अपने डॉगी के बारे में बात करते हुए मैंने इस बात पर विचार करने की कोशिश की थी कि आखिर क्या कारण है, वो कौन से तत्व हैं, वो कौन से वैल्यूज हैं जिसकी वजह से हम अपने डॉग से इतना परेशान होने के बावजूद उसे इतना अधिक प्यार करते हैं। तो उसके तहत आपको ध्यान होगा कि मैंने तीन महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा की थी और उसमें एक गुण था मासूमियत का, दूसरा कि वह तिरस्कार को कभी भी अपने दिल से नहीं लगाता, वो समझता ही नहीं है कि तिरस्कार क्या होता है, और तीसरा कि उसकी जो विश्वसनीयता होती है वो अनडाउटफुल होती है, मतलब उस पर आप संदेह कर ही नहीं सकते। शायद इन तीन गुणों के कारण ही ये जो डॉग हैं हम लोगों के दिल और दिमाग पर इस कदर छाए रहते हैं, और सच पूछिए तो इस सच्चाई को केवल वे ही जान सकते हैं जिन्होंने डॉग पाले हुए हैं। अदरवाइज तो ये सुनने में बड़ी बेवकूफी सी बात लगती है और उन बेवकूफों में मैं भी एक था, मुझे यह स्वीकार करने में कहीं तनिक भी हिचक नहीं है। स्वाभाविक है कि आप सबसे ये चर्चा करने के बाद फिर मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा, और प्रश्न यह उठा कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब चेतन प्राणी हैं, इस प्लेनेट पृथ्वी नामक ग्रह के सर्वश्रेष्ठ हम जीव हैं, रचना है, मनुष्य हैं, तो हम ये गुण अपने अंदर क्यों नहीं ला पाते। देखिए, हम सब भी प्रेम करते हैं और हर तरह के प्रेम करते हैं, रोमांटिक प्रेम से लेकर के माता पिता, देश, अपने पड़ोसी, घर के दूसरे सदस्यों, समाज, सबसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा जो प्रेम है वो उन ऊंचाइयों तक क्यों नहीं पहुंच पाता जिन ऊंचाइयों तक ये डॉग अपने प्रेम को पहुंचा देते हैं। और अगर उनके यानी कि डॉग के इतने ऊंचे स्तर तक प्रेम के पहुंचने के कारण ये तीन गुण हैं, तो हम क्यों नहीं इन तीन गुणों को ला पाते या ला सकते, उसमें क्या दिक्कत है। हम भी ला सकते हैं क्योंकि हम तो कुत्तों की तुलना में कई गुना ज्यादा समझदार हैं, तो हम तो ला सकते हैं, ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे। सच यह है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी प्रेम कथाएं हम पढ़ते हैं लोक जीवन में, दूसरी चूंकि वो कहानियां होती हैं तो कहानियों में तो आप उसे किसी भी रूप में गढ़ लें, या फिर जो दूसरी प्रेम कथाएं आप पढ़ते हैं जो एक तरह से अमर प्रेम कहानियां हो गई हैं, तो उसमें भी आप देखिए कि वो एक पर्टिकुलर एज की ही प्रेम कथाएं हैं और उन प्रेम कथाओं का अंत हमेशा दुखद होता है, यानी कि वो दोनों आपस में मिल नहीं पाते। जो प्रेम की परीक्षा होती है वो इनफैक्ट सही मायने में मिलने के बाद ही होती है। तो ऐसी प्रेम कथाएं भी हमारे सामने बहुत उपलब्ध नहीं है। हाँ, राधा और कृष्ण की जो प्रेम कथा है वो डेफिनेटली एक अलग तरह की प्रेम कथा है, लेकिन आप देखिए कि राधा और कृष्ण उस तरीके से तो नहीं मिल पाए हैं, है ना। राधा अपने घर में है, कृष्ण अपने घर में है, और इनकी प्रेम कथाओं ने तो वो ऊंचाइयां छुई हैं कि हम राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं, राइट। तो बेसिकली वो प्रेम की पूजा नहीं, प्रेम के अंदर जो अंतर्निहित मूल्य है, जो गुण है, मैं ऐसा समझता हूं कि वह उनकी पूजा होती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। हम तो कुत्ते से तो पता नहीं कितने गुना ज्यादा ऊंचे स्तर के प्राणी हैं। तो इस पर विचार करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हम सबके लिए शायद यह संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है मित्रों, मैं उसी की चर्चा अब करने जा रहा हूं, लेकिन आप ये कतई मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि नहीं ये एकदम ही असंभव है। संभव नहीं है, मैं आम लोगों की दृष्टि से कह रहा हूं। इसमें जो साधु संत महात्मा किस्म के जो व्यक्ति हुए हैं, जो बहुत महान महान व्यक्ति हुए हैं, डेफिनेटली उन्होंने इनकी कुछ सीमा को हासिल किया है या इनके सर्वोत्तम रूप को ही हासिल कर लिया हो, और उन्होंने दोनों ही लोगों से हासिल किया है, ईश्वर के प्रति भी और मनुष्य के प्रति भी, दोनों ही स्तरों पर उन्होंने इसे छुआ है, और शायद यही मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता की चरम सीमा भी है। जब हम इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मानकर चलना चाहिए कि हम एक आध्यात्मिक जीवन जीने लगे हैं। इन तीनों को पाने में मुझे जो बाधा लगती है फ्रेंड्स, वो एक एक अलग अलग तत्व के रूप में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी इन पर विचार करें। उदाहरण के तौर पर मासूमियत। देखिए, मासूमियत तो हम में होती ही है। उस फ्राइडे को भी मैंने चर्चा की थी कि देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो कितना मासूम लगता है, कितना प्यारा लगता है। लगता है कि उसके गाल को टच करें, उसके गाल को नोचें, उसे प्यार करें, उसे गले से लगाएं, उसे अपने दिल से चिपका लें, ऐसा महसूस होता है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उसके चेहरे पर मासूमियत है, यानी कि मासूमियत हमें बाय बर्थ तो मिलती है। अब संकट यह है कि हम उस मासूमियत को बचाए नहीं रख पाते, जबकि जो डॉग हैं वो इस मासूमियत को बचाए रख लेते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि कुछ बड़े लोग भी जब थोड़ी सी अधिक उम्र में आ जाते हैं तब भी उनके चेहरे पर मासूमियत बनी रहती है। उस मासूमियत की जगह आप कह लीजिए कि जो बचपना जो दिखाई देना चाहिए चेहरे पर वो बना रहता है। और मित्रों, इस मायने में मुझे ये कहने के लिए माफ कीजिएगा कि मैंने इस बचपने को, इस बाल स्वरूप को हमारे राष्ट्रपति जो शंकर दयाल शर्मा जी हुए हैं उनके चेहरे पर देखा है, कई कई बार देखा। यानी कि ऐसे ही मैंने धारणा बना ली है, मैंने सोच समझकर देखने और जानने की कोशिश की है कि आखिर में इन्होंने अपने बचपन को, अपने बचपने को कैसे अभी तक जीवित रखा हुआ है। उनकी हंसी में वो चीज दिखाई देती थी, उनकी आंखों में वो दिखाई देती थी, बातचीत में वो दिखाई देती थी, और चेहरे पर भी वो दिखाई देती थी। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे बचाकर रख पाते हैं। कैसे रख पाते हैं मुझे नहीं मालूम फ्रेंड्स, लेकिन क्यों नहीं रख पाते ये मैं जरूर बता सकता हूं अपनी दृष्टि से। और उसका कारण लगता है बुद्धि, मासूमियत। मासूमियत का मतलब है कि आप मासूम हैं, आप नादान हैं, आपको दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है, है ना। ये तिकड़म वाली जो दुनिया है, आप इसको ज्यादा, इसका जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे ही हम जानने लगते हैं, हमारे अंदर की यह मासूमियत मरने लगती है, खत्म होने लगती है। और जब हमें यह एहसास होता है कि हम तो पूरी तरह से जानते हैं, वह मासूमियत गायब हो जाती है। अब सवाल यह है, तो क्या हम बेवकूफ बने रहें, हम अपनी बुद्धि को बढ़ाएं ही नहीं, क्या करें? मासूमियत को बनाने के लिए हम मूर्खता ही धारण कर लें? ऐसा भी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि हम बुद्धि और मासूमियत के बीच में संतुलन कैसे बना पाते हैं, इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या किया जाना चाहिए। मित्रों, अभी ये मेरे विचार करने का विषय है, मैं डेफिनेटली इस पर भी विचार करूंगा, और अगर कुछ मुझे पता लग पाया, कुछ मैं सोच समझ पाया, तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने रखूंगा। अभी तो मैं केवल समस्याएं आप लोगों के सिर पर, आप यूं कह लीजिए कि लाद रहा हूं। दूसरा है तिरस्कार का, हम तिरस्कार नहीं कर पाते। कोई जरा सा भी हमारा तिरस्कार कह देता है, चाहे उसके बोलने के अंदाज में हमें लगे कि हमें ठेस पहुंचा रहा है, चाहे उसके किसी एक्शन से ही हमें क्यों ना लग जाए कि यह ठेस पहुंचा रहा है। भाषा में तो ठेस पहुंचाने की ताकत होती ही होती है, कुछ भी बोल दे और हमें ठेस पहुंच जाए। यहां तक कि हमारी धारणाओं के अनुकूल जब कोई सामने वाला एक्शन नहीं करता है या उस तरह से पेश नहीं आता है, तब भी हमें ठेस पहुंच जाती है, हमें लगता है कि हमारा तिरस्कार कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के घर जाते हैं और आपको लगता है कि जब आप वापस आएंगे तो बाहर दरवाजे तक आपको छोड़ने के लिए आएगा। सपोज वो अपने ड्राइंग रूम से ही आपको टाटा बाय बाय कह देता है और बाहर दरवाजे तक छोड़ने नहीं आता, इसे आप, हम सब अपना तिरस्कार मान बैठते हैं कि नहीं, इसने हमारी बेइज्जती कर दी, हमें बाहर तक छोड़ने नहीं आया, या हमें चाय नहीं पिलाई और ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। यानी कि हमने सोच लिया था कि वह ऐसा करेगा या उसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया, इस पर भी हमें ठेस पहुंच जाती है। इसका कारण है हमारा अहम, ईगो, हमारे ईगो को झटका लगता है। यानी कि जो सेकेंड पॉइंट है, तिरस्कार को हम तिरस्कार नहीं कर पाते, उसका कारण है हमारा ईगो। और तीसरा तत्व है विश्वसनीयता। ये तो खैर बहुत बड़ी चीज होती है विश्वसनीयता, हम लोगों का विश्वास उस तरीके से अर्जित नहीं कर पाते। जो हमारा आपस में जो कारोबार चलता रहता है ना, व्यवहार चलता रहता है, वो एक काम चलाऊ विश्वसनीयता के ही स्तर तक होता है, उस विश्वसनीयता में गहरी विश्वसनीयता नहीं होती। और इसको कौन सा तत्व है जो ठेस पहुंचाता है, या वो कौन सा तत्व है जो हमारी पूर्ण विश्वसनीयता को रोकता है, मुझे लगता है कि वह होता है हमारा स्वार्थ, सेल्फिशनेस। क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हम ये करेंगे तो इससे हमारा स्वार्थ ज्यादा सिद्ध होगा, फिर हम जब उसे करने लगते हैं तो नो डाउट कि सामने वाले के दिमाग में कहीं न कहीं अपने लिए एक डाउट क्रिएट कर देते हैं, एक संदेह का भाव पैदा कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि उसका संदेह कायम न रहे, क्योंकि वो विश्वास करना चाहता है हम पर। लेकिन अगर एक घुन लग गया तो आप समझ लीजिए कि घुन तो कहीं तक भी फैल सकता है, और विश्वास के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। तो मित्रों, मैंने तीन अवगुणों की कह लीजिए, या तीन गुणों की कह लीजिए, या तीन एलिमेंट तत्वों की कह लीजिए, चर्चा की है। मासूमियत को रोकने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो हमारी बुद्धि का होता है। तिरस्कार का अनुभव कराने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो हमारे ईगो का होता है। और हमारी विश्वसनीयता पर जो सबसे ज्यादा आंच जो पैदा करता है वह हमारे अपने स्वार्थ का होता है। मैं चाहूंगा कि आप सब भी इन पर अपने अपने ढंग से बात करें और मुझे भी कुछ सुझाएं, तो आप लोग के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिलेगी डेफिनेटली उससे भी मुझे फाइनल निष्कर्ष निकालने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने की आप सबसे विनम्र इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।